का सम्मान करती हैं। तू भी मन से साक्षात अपने हाथों से उनके चरण कमलों को स्पर्श नहीं कर पाती, इसके लिए देश भर में तपस्या कर रही है। आज तक उनको मिला या नहीं मिला ये निश्चित नहीं, इसलिए मन ही मन में लक्ष्मी जी करती हैं। और अजर ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि को भी अज कहा गया, ये अथवा अज मने अजा माया देवी, इसके संबंध में बदला परम मोहिनी रूप है, जीवों को ऐसे आकर्षण करती हैं जो कोई बैकुंठ में नहीं जाता। इसे महत्त्व इत्यादि के साथ, महत्त्व माने आठ आवरणों में से जगत के कारण समूह द्वारा उनका अर्चन करते हैं माया देवी भी। यज्ञ इत्यादि के प्रवर्तन के द्वारा आज्ञाकारी सेवक की भांति उनकी यज्ञ से उनकी पूजा भी करते हैं। आप तक हम मुक्त पुरुष लोग मनी मन में जिनके चरणों की अर्चन करते हैं, मनी मन में साक्षात में, जैसे यहाँ पर कोई पुजारी अर्चन करता है, क्या करता है साक्षात नहीं समझ पाता, उत्तम महाभागवतों के लिए था। तो यहाँ पर हम लोग भी कल्पना करते हैं जैसे ये पूजा उनके चरणों में पहुंचे, तो भक्ति के द्वारा ये लोग पूजा करते हैं कि वो चरण हमारे हृदय में उदित हो जाएं, इसके लिए तो ब्रह्मा इत्यादि की लक्ष्मी की यह दशा है तो साधारण लोगों के लिए राधा जी का चरण कितना दुर्लभ होगा। यू कैन कम हियर। सदात्मनि, सदा आत्मनि, सत आत्मनि, सदात्मनि, दो प्रकार से लक्ष्मी क्या है। भगवान के चरण कमलों की विशेष रूप से संग के द्वारा जिनकी धी बदली हुई है, बुद्धि निश्चल हो गई है, भगवान के चरण कमलों की चिंता करते 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 जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, कोई भी सांसारिक वासना नहीं है, यथायोग्य रूप में मन में सदा वो अर्चन करते हैं जिन चरण कमलों की, कृष्ण के चरण कमलों की, कभी कभी उनको साक्षात भी हो सकता है, कभी कभी, अथवा सदात्मनि पद के द्वारा सत अर्थात संबंध बसता आत्मनि पद अर्थात आत्मा में ही अर्थात मन में ही उनका चिंतन करते हैं, साक्षात नहीं होता ऐसे लोगों को जिनके चरण कमल, अथवा आत्मा के द्वारा कृष्ण की आत्मा गोपियां हैं, इसलिए गोपियों को यहां पर लगाओ, सदा आत्मा के द्वारा ये गोपियां राष्ट्र गोष्ठी में ये गोपियां इतनी सौभाग्यवती हैं कि राष्ट्र स्थली में कृष्ण के चरण कमलों को आत्मनि अपने हृदय पर स्थल पर रखकर अपने कृष्ण से विरह जनित जो ताप था उसको दूर कर दिया। एक चीज समझो, जिस समय में कोई गोपी कृष्ण से मिलने के लिए घर में आतुर हो रही और उसके पतियों ने उसे बंद कर दिया, तो अत्यंत विरह ताप से उसके अश्रु और शुभ दोनों जल गए, ये भागवत में। और कोई गोपी को जिसको रुद्ध कर दिया वो लोग शरीर की भी छोड़ दिया, ऐसा लिखा है, देह को त्याग कर दिया। तो यहां पर देह का शब्द का अर्थ होगा भाव। क्या भाव कोई बतला रहे हैं? श्रीमद् भागवत में वो थोड़ा सा चीज बहुत दूर चीज है समझना। उनके विरह के ताप से अशुभ जल गए और कृष्ण के चरण कमलों को उनको हृदय में धारण कर और उनका परिरंभण किया जोर से, उनके जितने प्रकार के शुभ है वो भी जल। और श्लोक क्या है, जैसे वो छोड़ दिया इसके बाद में क्या, उनका मंगल भी क्षीण हो गया, अमंगल भी क्षीण हो गया, अंत में जहौ गुणमयम देहम, गुणमय शरीर को त्याग। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि विरह में उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक मंगल की चीज जो कहाँ रास में आएंगी तो अमंगल हो जाएगा, इसलिए नहीं। कृष्ण से साक्षात रूप में मिली क्योंकि वहां पर गोपी शरीर में देह धारण करने से वो चिन्मय हो जाता है और चिन्मय नहीं रहता, जड़ नहीं रहता, वो मिल गई। और उनका विरह का ताप का जो भाव रूपी देह है वो समाप्त हुआ, मरी नहीं। भाव विरह का भाव कृष्ण से मिली, उनका जो विरह का ताप था वो दूर। इसे यहाँ पर गुणमय शरीर को छोड़ दिया तो ये मत समझना कि देह का त्याग किया, बल्कि कृष्ण के प्रति उनका जो विरह था वो भाव में दूर हो गया, कृष्ण से मिल गई। यहाँ पर भी ऐसा ही समझ, पूर्वोक्त उक्ति के अनुसार ये अर्चक का ये भाव दिखलाया गया है। देवों से, देवताओं से ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी से महेश्वर श्रेष्ठ हैं अर्चक के रूप में, और महेश्वर से भी लक्ष्मी देवी, और उनसे भी मुनि चकल नारद और सुखदेव गोस्वामी इत्यादि मुनि, और उनकी अपेक्षा भक्त और भी जो उच्च कोटि के उद्धव इत्यादि भक्त, और उनकी अपेक्षा भी गोप कुमार, और गोप कुमार से भी गोपियों का परम उत्कर्ष है। यहाँ पर मूल में है सब शब्द, कृष्णस्य सद भगवत, सत सद भगवत, सद माने क्या, सद को ले जाओ कहाँ, आसाम हो चरण, इसके पहले का श्लोक, आसाम हो चरण रे जिसाम हम क्या, उन चरणों को जिसकी धूली लगती है लता गुल्म के ऊपर में और जिसके लिए जन्म लेने की अभिलाषा कर रहे हैं उद्धव जी, ऐसे सब भगवान के जो चरण कमल है। किंबा परम दुर्लभ भक्त इत्यादि द्वारा सुप्रसिद्ध परमेश्वर विशेष यशोदानंदन श्रीकृष्ण, श्री कृष्ण के चरणों की धूली जिन गुल्म लताओं पर लगी है, ऐसे गुल्म या लगती है, ऐसे गुल्म लता घास इत्यादि हो जाने की उद्धव जी आकांक्षा कर रहे हैं। वो उद्धव जी की आकांक्षा का जो चरण कमल है, की धूली है, उसके लिए तब यहाँ पर विशेष यशोदानंदन के लिए सब और सामे गोपियों के जो आराध्य जिनके चरण कमल रखते हैं उसको यशोदानंदन नंद की शोर ही समझिए। उनको गोपियां अपने साक्षात अंगों पर धारण करती, बल्कि कभी 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 नहीं भी चाहती हैं, कृष्ण अपने आनंद के लिए ऐसा करते हैं। केवल कृष्ण के आनंद के लिए गोपियों का सब कुछ समर्पित है। इसलिए ये कृष्ण स्वयं कर रहे हैं ऐसा समझो। इसलिए प्रेम वैभव के बस सब भगवान स्वयं ही वैदक्षी के रूप में ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ऐसा रस का उत्कर्ष लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त है, यहाँ तक कि द्वारका की महिषियों को भी नहीं प्राप्त है, ये भी इसकी कही जा सकती है सत्यभामा रुक्मिणी प्रभृति। इसलिए तहां उनका महान महात्मा महिमा सूचित होती है गोपियों की उन सबसे अधिक। दूसरी तरफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आलिंगन करने से ब्रह्मा से आपका काम श्रेष्ठ है, बिल्कुल कोई कामना नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी को मत रखो बल्कि सनत सनन की मात को रखो, ये आपको कोई कामना नहीं। तो अभी कृष्ण के चरण कमलों को देखते ही इनके अंदर में कामना आ जाती है और उनकी सेवा की अभिलाषा जग उठती है। उनसे भी योगेश्वर और उनसे भी लक्ष्मी और लक्ष्मी से यहाँ पर राजपीड़ा ने गोपियों का महान उत्कर्ष बताया गया। इन गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधिका है। इसलिए उस समय गोपियों के स्वाभाविक महाभाव विशेष तिरहान जो उठा, जिसको महाभाव होगा वही कृष्ण के विरह को समझ सकते हैं, उनके हृदय में होगा अन्यथा नहीं होगा। जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं है उनको कृष्ण के दर्शन से आनंद ही नहीं होगा और उनको विरह संताप भी नहीं होगा। कितना बचा? साढ़े सात, साढ़े सात। तो उनको अनुभूति प्रेम के ऊपर में सब कुछ निर्भर है। वैष्णव के ऊपर में गुरु के प्रति जिनका प्रीति होगी वही उनकी महिमा को जान करके उसकी सेवा कर सकेंगे। जिसको प्रीति नहीं है वह नहीं कर सकता। तो कृष्ण के प्रति जिनकी प्रीति है वही कृष्ण को देख करके आनंद का अनुभव कर सकता है, उनकी सेवा में आनंद पाएगा या उनके लिए विरह हो सकता है। जिसको प्रेम ही नहीं है उसको क्या विरह हो सकता है, क्या आनंद हो सकता है। इसलिए गोपियों में ये स्वाभाविक रूप से महाभाव भी रूढ़ रूप में महाभाव हो सकता है कि उसका कुछ भाव रूपणी सत्य भावना में मिल सकता है और गोपियों में मिल सकता है रूढ़ भाव। किंतु रूढ़ भाव में जो मुख्य चीजें हैं वो राधिका जी के अपनी सहेलियों में ही होगा ललिता विचार, और इसके बाद के जो भाव हैं वो केवल श्रीमती राधिका में। जैसे एक एक शब्द के बड़े सुंदर अर्थ हैं। जैसे रूढ़ है, रूढ़ माने क्या? स्वाभाविक। मोदन का अर्थ क्या है? मोद से मोदन, मोद माने आनंद, आनंद माने साधारण नहीं, जिसके द्वारा गोपियों को गोपियां कृष्ण को मोद प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। मादन माने क्या? मद से मादन, मद से मादन। ये सब प्रेम के एक एक जो चीजें हैं जिनमें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। राधिका के अतिरिक्त कभी भी मादन वाला भाव कभी भी दूसरों में नहीं होगा, बस उन्हीं में है। इसलिए राधा जी कृष्ण की सर्वोत्तम रूप में सेवा करती हैं या आनंद की करती है, और कृष्ण भी उसी के द्वारा सबसे अधिक मुक्त होते हैं। इसलिए गोपियों की महिमा सबकी अपेक्षा अधिक है। क्या ऐसे गोपियों का महा जो साथ है, मैं कृष्ण ने मुझे भेजा है गोपियों के पास में, क्या मैं अपनी चातुरी से उनके इस विरह ताप को दूर कर सकता हूँ या भगवान के संदेश के द्वारा उनका विरह ताप दूर होगा? कभी कभी नहीं संभव। ये कैसे होगा? यदि पहले जैसा रास क्रीड़ा वृंदावन में करे गोपियों से मिलन हो तब कभी संभव, अन्यथा संभव नहीं। वो कृष्ण के समझाने पर, इसलिए उद्धव जी आए, समझाया गोपियों को, किंतु उनका विरह का ताप और भी बढ़ गया। इस श्लोक में जा जा जो है ना, जा जा वही जा मैंने फिर ओली वहीं पर ले जाना पड़ेगा। पूर्वोक्त आशा मोह चरण से संबंधित होगा। जो चरण कमल उद्धव जी चाहते हैं कि उसकी चरण धूलि पाने के लिए, गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए मैं लता गुल्म बन जाऊं और गोपियां दुष्टजन स्वजन आर्य पसंद हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुति भी मृगिया। गोपियां साक्षात रूप में जिनकी सेवा कर रही हैं, फिर वहीं पर उसको लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, योगेश्वर लोग कोई भी नहीं, यहाँ तक कि रुक्मिणी सत्यभामा के लिए भी ये संभव पर नहीं है। इसलिए गोपियों की इतना महिमा है। इसलिए उद्धव आते गोपियों के चरण धूलि पृष्ठ गुण लता में से ये धूप की घास है या जमीन पर रहने वाली जो घासें हैं जिस पर गोपियां चल सकती हैं, जिनकी चरण धूलि उन पर साक्षात रूप से मिली। एक तो होता है उड़ करके जाए, ये कहते कि वैसी नहीं, गोपियां हमारे सिर के ऊपर में चले और वो चरण धूलि वो हमारे हमको प्राप्त हो। उद्धव जी स्वयं ब्रज में जाकर के ये गोपियों की महिमा की उपलब्धि की, और ये भी हुआ है गोपियों के संग से ही ऐसी आकांक्षा उत्पन्न हुई, नहीं तो संभव पर नहीं है। ऐसी आकांक्षा भी ऐसे उत्पन्न हुई है ऐसे महात्माओं के जो राधा जी के प्रति अर्पित हैं, अथवा उनके संग के प्रभाव से ही ऐसी इच्छा कामना प्रकट हो सकती है कि मैं गोपियों की चरण धूलि का सेवन करने के लिए ब्रज में कहीं भी लता गुल्म घास बन जाऊं। बागरानी अतः सुखदेव गोस्वामी दसम स्कंध के अंत में महर्षि गणों के महात्म प्रसंग में गोपियों का विस्तारित रूप से वर्णन किया है। महिमा जो लोग पति के रूप में कृष्ण के चरणों की सेवा की और प्रेम के दास द्वारा जगत गुरु की अर्चना किया था, उनके चरणों की पूजा की थी, उनकी तपस्या का वर्णन में क्या कर सुखदेव गोस्वामी जी का। किंतु यहाँ पर जार बुद्धि न रह करके भ्रतृ बुद्धि से कहा, पति के जार बुद्धि से नहीं, गोपियां उपपति भाव से यहाँ पर नहीं कहा गया। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी सब समय गोपी भाव आविष्ट हैं, गोपी भाव विशेष करके दशम स्कंद में जब आए हैं और रासलीला का प्रसंग गोपी गीत का, भ्रमर गीत का जब कर रहे हैं तो गोपी भाव में अत्यंत आविष्ट हो। उस समय में प्रेम भर करके अतिरिक्त स्वभाव के बन गए, इसलिए गोपीगण के सुप्रसिद्ध जार बुद्धि का उल्लेख नहीं किया, पति भाव से साधारण लोगों की दृष्टि से। विशेष करके कल या परसों आप लोगों ने सुना जयराधार जी ने अलग समय उनको बंद कह दिया था, खबरदार हमारा नाम या किसी का नाम मत बदला, परोक्ष रूप में लेना, कभी काश्यप का ना कभी श्री कहना, कभी कमला कह सकते हो, कभी मां लक्ष्मी कह सकते हो, कभी कुछ रूप में, किंतु डायरेक्ट रूप में राधा ललिता विशाखा इत्यादि हम लोगों का किसी का नाम न ले। विशेष करके ये जहाँ राधा जी का नाम लिया और गोपियों का किसी का भी नाम लिया तो ये 6 महीने की मूर्छा प्राप्त हो जाती, इसलिए भी नहीं लिया। दूसरी बात, उनके गुरु हैं राधा जी, उनकी आराध्या देवी हैं, आराध्या देव का सब समय जहाँ तहाँ नाम नहीं लेना चाहिए, हृदय में छिपा कर उनको रखना। हमारे गुरु जी राधे राधे यदि कोटा तो बिगड़ जाते, जहाँ तहाँ मत प्रकाश करो। अतः भगवान भक्तिभावक पति भाव को जानने वाले, पति के प्रति स्त्री का क्या कर्तव्य है, पति का स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है, इन भावों को जानने वाले उद्धव जी को धूप काम में नियोजित किया। निगुण भाव उनका जो जार भाव है उसका सर्वोत्कृष्ट भाव वर्णन करने के लिए सर्वोत्तम भाव है, इसलिए उनको ब्रज में भेजा। साधारण लोगों के लिए उद्धव जी आए तभी से ये जगत में विशेष रूप से प्रचार हुआ, गोपियों को इस भाव प्रचारित किया। इसलिए ऐसा निगुण जार भाव माने उपपति भाव कृष्ण के प्रति जगत में उन्हीं के द्वारा हुआ, विशेष करके प्रेम आय प्रियो जगचार गोषा इत्यादि श्लोक के द्वारा। यदि कहो जैसे ऐसे भाव पुरुषों के लिए नहीं है तो यह बात नहीं, दंडकारणी अरण्य निवासियों के ऋषियों का ये उदाहरण दे रहे हैं कि साक्षात या दंडकारण्य निवासी ऋषि लोग गोभी मंत्र, गोभी मनेंगे गोपाल मंत्र के द्वारा उनकी आराधना कर रहे हैं और उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, देखते ही उनका भाव और वर्धित हो गया और वे लोग विशेष रूप से कृष्ण को उस ऐसा प्राप्त करने के लिए गोपी भाव से आराधना करने लगे। बड़े जो रामचंद्र जी बड़े दयालु हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि गोपी भाव गोपियों के रूप में प्रकट लीला में तुम लोग गोपी के रूप में प्रकट हो। और उस समय में गोपियों के सहचर्य से मित्र सीता गोपियों के सहचर्य से तुम्हारी भावना की सिद्धि, इसलिए वो लोग कपुरुष थे किंतु इस भाव से आराधना की और उनकी इस सुख में सिद्धि। इसलिए केवल स्त्री जाति के लिए नहीं, आत्मा न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है न नपुंसक है, वो कुछ जगत के इन विचारों से कुछ भी नहीं। इसलिए रामचंद्र जी के पास से उनकी भावना की सिद्धि है। इसी तरह से यहाँ उद्धव जी जो प्रार्थना कर रहे हैं इसके मालूम होता है क्योंकि सोचा उनकी भावना थी ऐसे ही, किंतु वो मिला कि नहीं भाव अभी तक संभावना है। इस तरह से गोपियों का ये महात्मा सबसे बढ़ करके वर्णन किया। आज यही सत्र वंशा कल पतितानम पावन, जिनको नहीं मिला है करें किंतु भगवान का भजन भगवान का नाम करना, सदाचार अवलंबन करना और जितना ही गहरा भगवान में प्रीति होती जाएगी, प्रेम होता होता जाएगा, माया छोड़ेगी और विक्रम सा साधन भजन में लग करके संसार को छोड़ कर सुख और शांति चाहते हैं भाई, इधर में आ गया।
आप लोग इधर आइए, इधर हमारे सामने आ जाइए। और शांति चाहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सुख के लिए ही बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक हम लोग कार्य करते हैं, विवाह शादी करते हैं, घर बार करते हैं, नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय करते हैं, सारा जीवन समाप्त होने पर जब वृद्धावस्था आती है, पूछो जिस सुख शांति तुमको मिली 100 वर्ष उम्र हो गई वृद्धा या वृद्धाओं, उनसे पूछो सुख शांति कुछ जीवन में मिली, नहीं कह सकेंगे जहाँ सुख और शांति मिली। हम आपकी तो बात ही क्या, सारे विश्व के बड़े बड़े मनीषी लोग भी, बड़े बड़े विद्वान, सब राष्ट्रों के अध्यक्ष लोग मिल करके इसके लिए विचार करते हैं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी डर्बन में दक्षिण अफ्रीका में गए हैं, उसमें 120 या कितने राष्ट्रों के बड़े बड़े लोग गए हैं, केवल इसीलिए कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं, हमारे दुख कैसे दूर हैं, किंतु कोई समाधान नहीं मिल रहा। आज नहीं, लाखों कोटि वर्षों से नहीं मिल रहा है। जो इस विश्व का सृजन करता है, जो इसको समेट लेता है, जो इसका पालन पोषण करता है, जरूर कुछ है, उसी को ब्रह्म परमात्मा भगवान कहते हैं। उसी की कृपा की घनमूर्ति समस्त शास्त्रों को जानने वाले, समस्त शंकाओं को दूर करने वाले, भूत भविष्यत वर्तमान को देखने वाले, उनकी कृपा ही मूर्ति रूप में गुरुदेव कहलाते हैं। इसलिए गुरु साधारण पद नहीं है। जो सुखी और शांति का एकमात्र मार्ग प्रदर्शन करे, भगवान के विषय में जानने वाले हैं। ये दुख क्यों होते हैं, जन्म मरण क्यों होता है, आदमी माया में भटकता रहता है, अवश्य मरेगा, जो आज जन्म लिया है कल जरूर मरेगा, कल नहीं तो परसों नहीं वर्षों मरेगा, 100 वर्ष 200 वर्ष 250 वर्ष 500 वर्ष 1000 वर्ष लाख वर्ष में मरेगा जरूर। इसलिए इन विषयों को जानने वाले हैं, कैसे हम दुखों से निवृत्ति हम पा सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं, इनके विषय में खूब अच्छी तरह से अनुभव करके जान लिया है, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु साधारण आदमी नहीं है। आजकल गुरु शब्द को लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, जैसे तैसे अज्ञानी लोग, व्यभिचारी लोग, कुछ नहीं जानने वाले लोग गुरु हो जाते हैं और अंत में कुछ होता नहीं, इसलिए लोग भी कुछ भ्रमित हो गए। इसलिए अभी कीर्तन में गाया कि वो जो संसार भाव बंध मोक्ष को जानने वाले हैं, संसार के दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है, नित्य शांति कैसे पाई जाती है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, इसका जो पथ प्रदर्शन करने वाले हैं वो गुरु हैं। उनके उनकी सेवा से हम सहज ही भाव सागर को पार कर सकते हैं। वो जानते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, बिना भगवान को प्रसन्न किए हुए जिनका यह जगत है, बिना प्रसन्न किए हम सुख और शांति नहीं हो। सुख और शांति का मूल प्रॉब्लम ये है कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने बुद्धि दी, जिसने शरीर दिया, उनको हम अभी भूलकर संसारिक नश्वर दुखदायी बीचों में पड़े हुए है। इसी में आत्मा परमात्मा, किंतु उसे समझ नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। इस चीज के लिए जो हमारा उद्देश्य ठीक कर देता है, क्या जीवन का उद्देश्य है, जो निर्धारित कर देता है, निश्चित कर देता है, और कैसे अपने जीवन को हम सुचारू ढंग से अग्रसर करें जो हम सुख शांति हो जाए, ये गुरु ही जीवन में निर्देश कर, और नहीं। जो तो कुछ आत्मज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, भगवान में प्रेमा भक्ति हो, ऐसा व्यक्ति कर, इसलिए उनके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई गति नहीं। जो लोग ऐसे गुरु ऐसे महापुरुष का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनका जीवन सुखी और शांति हो जाता है। जो लोग दूसरों को ठगते हैं, असल में भगवान की अनुभूति नहीं है, भगवान का भजन जो नहीं करते, अपने को स्वयं ब्रह्म भगवान मान लेते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने को कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही भगवान हूं, ऐसे लोग पथ भ्रमित कर देते हैं लोग। इसलिए वेद शास्त्र श्रुति सब में ऐसा कहा गया है, ऐसे शुद्ध बड़े नंबर विनयी, बड़े उदार कृपालु, हम सब पर दया करने वाले और खुद भविष्य वर्तमान को जानने वाले, ऐसा व्यक्ति यदि हो तो वो गुरु शब्द बात, उनके चरणों का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करो, तब तक सुख शांति होगी, अन्यथा कभी भी संभव पद नहीं है। ऐसे ही फिर मनुष्य जन्म लेकर के आए हैं और फिर न जाने कुत्ते गधे, न जाने क्या होंगे, कोई ठीक नहीं। इसलिए इसी जन्म में मनुष्य का जन्म दिया, वो भी बड़ा सुंदर दिया, सबल दिया, मस्तिष्क अभी ठीक है, आंखें ठीक हैं, इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पा करके इसी जन्म में ही हम अपना उद्देश्य स्थिर कर लेंगे और ठीक कर हम आगे बढ़ेंगे। जीवन निर्वाह है तो जरूर करना है, उसके लिए भी तरीके हैं। जीवन निर्वाह करने के लिए दिन रात उसी में रस पच जाओ, इसके लिए नहीं, जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरत है बस उतना ही देख करके भगवान का भजन कर लो। यदि यह हो गया तो तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध हो गया, और यदि भगवान का भजन नहीं हुआ, अमेरिका में लाखों डॉलरपति, करोड़ोंपति, अरबोंपति लोग हैं, आप लोग सुन ही रहे हैं, ये सब पेपर तो देखते होंगे, जितने बड़े बड़े धनी आदमी हैं वर्ल्ड के, विशेष करके मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के, वो सब लोगों की हत्या कराते हैं, लोग यानी क्या क्या कराते हैं, हाथताई ये सब। इसलिए मनुष्य जन्म की दुर्लभता समझ करके सहज रूप में भगवान का नाम करते हुए और इस जगत से चला जाना हो। जिसने भगवत भजन नहीं किया उसका जन्म बेकार है, जो लोगों ने कुछ नहीं किया किंतु भगवत भजन किया उनका जन्म सार्थक है। इस चीज को समझो। आप लोग सभी जानते हैं महाराज परीक्षित जी पृथ्वी के राजा, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उनके पुत्र ये थे। कृष्ण ने गर्भ में इनकी रक्षा की, सब शास्त्रों में पारंगत थे, ये बचपन से ही स्मरण करते हैं कि इनके पिताजी 16 वर्ष की अवस्था में दुर्योधन आदि दुराचारी लोगों के द्वारा मारे गए, और इनके पिता के पिता अर्जुन इत्यादि को बड़े बलवान भीम हैं, महाराज युधिष्ठिर जी परम धर्मात्मा हैं, अर्जुन भी परम वीर हैं, नकुल सहदेव ऐसे हैं, द्रौपदी जी ऐसी हैं। प्रारंभ जीवन के प्रारंभ से ही कितने झंझटों में दुखों में उनको गुजरना पड़ा। इन पांचों को मरवाने के लिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने कितने उपाय किए, घर से निकाल दिए गए, फिर युद्ध हुआ उसमें इनके सारे लोग मारे गए, स्त्रियां विधवा हो गई। और फिर जब राज्य मिला तो वो लोग चले गए हिमालय में और वहीं पर शरीर को छोड़। इतने सब संसार के विषयों को जानते हैं महाराज परीक्षित, और अंत में उनको एक ऋषि के द्वारा भी श्राप हुआ, तुम्हें सांप काटेगा सातवें दिन और मरेगा। और सब हुए राज्यपाल जी सब को छोड़ करके गंगा नदी के किनारे।
मात्र प्राणी मात्र भगवान
हम उनके प्रति सेवा इत्यादि की भावना भूलने से इस संसार में दुखी और जन्म मरण में पड़े। समस्त शास्त्र यही बतलाते हैं कि भगवान की सेवा की वृत्ति किसी प्रकार से हृदय में जरूर जाए, यही जीवन के लिए पूछा। आजकल जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेद उपनिषद गीता भागवत रामायण नहीं मानते और अपना अपना अलग अलग एक धर्म नया निकाल करके जगत में उसका प्रचार करते हैं। आप लोग इन लोगों से सावधान रहें। भगवान के प्रति जीव का के हृदय में प्रेम, यही हमारा धर्म है। चाहे प्राणी मात्र में कोई भी हो, कीट पतंग से लेकर के मनुष्य ब्रह्मा देवता तक, यह प्रेम ही हमारा आत्मा का धर्म है, अपना धर्म। या किसी न किसी रूप में यह संसार में भी दिखता है, हम सबको प्यार करते हैं। एक सिंह, एक भालू, एक महाफिरोसर बाघ भी अपनी पत्नी और बच्चों को प्यार करता है, एक चींटी भी अपने बच्ची से प्यार करती है। इसलिए सब में यह प्रेम है, किंतु यह प्रेम अभी विकृत प्रेम है। जब भगवान के प्रति यही संशोधित होकर के लग जाएगा तो यह विशुद्ध प्रेम, इसके अतिरिक्त और कोई जीव का धर्म नहीं है। और इसको पाने के लिए भगवान की कथा श्रवण, भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि, यही एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति, जिसको भगवत भक्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिस धर्म में जो आजकल प्रचार कर रहे हैं, जिसमें गीता भागवत वेद उपनिषदों के अनुसार में भक्ति का विचार नहीं है, उसको कभी आप लोग ग्रहण ना करें। आजकल विशेष करके इधर में ब्रह्मा कुमारी और मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, आजकल योग की नई प्रथाएं चल पड़ी हैं, शरीर का कसरत करने से भगवान मिल जाएंगे, शरीर अच्छा हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैदान है वहाँ देखेंगे हजारों आदमी, यहाँ तक मैंने चीन में देखा, अमेरिका में देखा, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी सब विश्व में देखा, कुछ व्यायाम कर रहे हैं, कहा ये योग है, यही जीवन का मूल कसरत है, जितना भी व्यायाम करो मरोगे। हमारे गामा पहलवान विश्व में बड़े सबसे बड़े पहलवान थे, वो ऐसे मरे टीबी हो गई, जिनको पानी देने वाला कोई नहीं मिला और हाथ से पानी भी नहीं पी सकते। जवाहरलाल जी का तो देखो कैसे लोग मरे। इसलिए योग से नहीं, कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, कोई कुमारियां हैं भ्रष्टाचार में डूबी हुई,
या डूबे हुए अपने को ब्रह्म का, ये कल विश्व ध्वंस हो जाएगा, और हमारे जो क्षण में आएगा तो वो तो भगवान को पा जाएगा, शांति हो जाएगा। ऐसे ऐसे कितने धर्म चल रहे हैं जगत जिनका वेदों से उपनिषद से भागवत से इसलिए गीता भागवत वेद पुराण रामायण जो नहीं कहते हैं उसको मत मानो, किसी मनुष्य को भगवान मत मानो। आजकल बहुत से सभी लोग गुरु बन रहे हैं, गुरु में ये देखो संसार से विरक्त हो, पैसे के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, पति स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति कोई आसक्ति न हो और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहा हो, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, भगवान का भजन करने वाला है, अनुभूति है, ऐसा व्यक्ति गुरु। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ उनको तो कभी खबरदार, उनसे मत, जीवन नष्ट कर देंगे। इसलिए आधुनिक योगों से ये जो योग माने होता है क्या, एक और एक योग होने से दो हो जाता है ने? मैं हूं और जीरो से योग कर लिया जो कुछ नहीं चित्त को ऐसे ही समाधि कर, तो ये योग कहां रहा। एक वस्तु जो स्वयं है उसमें योग नहीं होता, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के योग को योग कहते हैं, जब परमात्मा से जीवात्मा का योग जिस विद्या के द्वारा हो उसको योग कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझो, कृष्ण ही परमात्मा है, इनसे बढ़कर के और कोई परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं, भगवान नहीं। इसलिए कृष्ण के साथ में अपने चित्त को लगाना, प्रथम अवस्था में अपने कर्मों से जब योग करते हैं भगवान के लिए ही कर्म करते हैं या कर्म करके अर्पण कर देते हैं, इसको कहते हैं कर्म योग। जब ज्ञान विचारों से अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं ज्ञान योग। और सेवा इत्यादि के द्वारा भगवान के साथ अपने चित्त को भगवान से जब जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं भक्ति योग। इन तीनों में भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। योगिनां सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स्वमेव। जो लोग श्रद्धापूर्वक अपने चित्त को भगवान में लगा करके उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम कीर्तन करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, वो समस्त प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं और कहते हैं सर्वधर्मान परिसज्य, और जो संसार के जो धर्म है देह और मन से संबंधित इन चीजों को समझ करके जो वैदिक रीति से इस पथ पर चलते हैं, भक्ति का प्रचार करने वाले हैं, भक्ति की बात कहते हैं, कृष्ण में अपने चित्त को निवेश करने के लिए कहते हैं, इनकी बात सुनिए और उसके कल्याण होगा। और कली काल में जितने भी प्रकार के भगवान को पाने के लिए साधन हैं, उन समस्त साधनों में हरि नाम ही से, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही होगा। कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो संसार से परम विरक्ति, नंगे भी रह सकता है, कुछ खाता नहीं है, उसकी अपेक्षा यदि कली काल में कोई एक व्यक्ति हो जो कुछ भी नहीं करता, हरिनाम करता, उसे कोटि गुण श्रेष्ठ को समझ, खाते पीते घर का काम करते हुए भी, अनायास ही चलते फिरते उठते बैठते छींकते हुए फिसलते हुए भी यदि भगवान का नाम राम कृष्ण निकल गया तो उसे जगत का कल्याण हो जाए। और लाख वर्ष हम ब्रह्मास्मि करो या दूसरे साधन योग खोग करो जिसमें भगवत भाव से कोई संबंध नहीं है, उसे लाख कोटि जन्म में कोई भी कल्याण नहीं हो सकता, इस चीज को समझ करके हरि नाम का चाहे जोर से करो चाहे धीरे से करो चाहे मन लगा कर चाहे न करो भी, यदि आग में हाथ डालो और ये मत बिना जाने हुए तभी वो जलाएगा। इसलिए बिना श्रद्धा के भी यदि हरि नाम होगा तो भी अपना कुछ न कुछ फल देगा, और यदि श्रद्धा के साथ में भगवान नाम करेंगे तो क्यों नहीं अच्छा फल देगा। इसलिए कली काल में इससे बढ़ करके कोई भी साधन नहीं है, इस पर पक्का विश्वास रख करके भगवान का नाम करें, सब घर का काम करें, जो त्यागी हैं वो त्यागी होकर के करें, जो गृहस्थ हैं वो गृहस्थ होकर करें, यही सब धर्मों का सार है। आज यही पर हम अपना वक्तव्य समाप्त कर रहे हैं, अभी के संकल्प अंत में महामंत्र।